Magari devo prendere un po' di sacco dopo. Allora, chiedo a me anche a salvo marissimane. Perché forse si dà, direi che a marissimane che stamante sono a frattere la signora ora tra e a donare ne vale. O salvo e si non chiama con la lente. Marissimane è dopo i tradigli a dire a suo amare stare perché per quanti. Perché vediamo se la sera non vogliono più dire, lo dice. Possiamo la pasta andare così le chiesi a come me ne è scuola da tenere. Ora non sapevo un racconto di che gli è a marito non ti dà che lei per dire. O già non ti dà anche da te essere di a come lo dire. Quindi di a come le salman bastare. اور وہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے خاص کر ان دیہاتوں میں پہنچنے کی ترتیب بنائی جاتی ہے اور یہ دیہات ہمارے بہت ہی قابل رحم ہوتے ہیں کیونکہ ہماری وہ بستی ہیں وہ دیہات جہاں مسلمان آباد ہے جہاں شاعر اسلام موجود ہے مسجد موجود ہے اذانیں ہوتی ہے پرتے پجامہ گاڑی ٹوپی والے لوگ نظر آتے ہیں تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی اس کا اپنا تشخص اور اپنی ثقافت اور ان کا رہن سہن ان کے اندر اس کا تعارف ہوتا ہے لیکن ہمارے وہ دیہات جن دیہاتوں میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں کا مسلمان ان چیزوں کو دیکھ بھی نہیں پاتا اور ہوتے ہوتے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں اس معاشرے کا تاثر ان پر ہوتا ہے زونوں کی جماعتیں جو چلتا رہتی ہے اس سے جو کاروباری سنتے ہیں تو اکثر یہی کاروباری آ رہی ہے کہ مقامی جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول سے متاثر ہو کر ایسا مسلمان زندگی گزارتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کوئی سکھانے والے بھی نہیں ہوتے جب سکھانے والے بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر جہالت ہوتی ہے جہالت جو ہے وہ کفر کی صفت ہے اور اکثر یہ دیہات کے لوگ غریبی میں زندگی گزارتے ہیں اور غربت جو ہے فقیری یہ بھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے تو ایسا مجمعہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہماری محنت سے چھوڑ جائے یہ بہت قابل فکر بات ہے اللہ کے ذرا خیر دے کہ آپس کے مشورے کی ترتیب بنے کہ حضرت کے پاس پہنچا جائے اور ان کو سمجھنا سمجھانا ہو ہمارے ماحول میں لانا ہو تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری یہ دونوں کی جماعتیں ایسی ہی بستی میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کام کر کے آتی ہے اور اس سے بڑی خیر وجود میں آ رہی ہے اللہ کا احسان کل ہم احمد آباد میں تھے تو یہ جماعتیں سروری سنائی کے ساتھ سے ملاقات ہوئی یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی 40-45 سال کی عمر یہ پہلی مرتبہ زندگی میں دین کے نام پر میرے کان پر کوئی بات پڑی ایک جوان سے ملاقات ہوئی 19 سال کا اس نے کاروباری سنائی کہ زندگی کی یہ میری پہلی نماز ہو رہی ہے بلیٹ ٹرین چل رہی ہے اس میں کام کرنے والا علاقوں کا مجمع آیا ہوا ہے گاؤں کی جماعت کی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے ہو گئے ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا تو ایسے اور کئی برادریاں ان سے ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے ان سے جو تاثرات پیش کیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس مہینے کو چھوڑ دیا جائے تو ایسا ہے کہ کوئی دھکا مارے وہ سڑک گر جائے گا ایسے ماحول میں ماشاء اللہ ہماری زون کی جماعتیں چلتی ہے کرتی ہے اور ماشاء اللہ وہ کام کرتے ہوئے یہاں لوٹتی ہے آج بھی ہمارے اس مہینے میں 2 جماعتیں ہیں ماشاء اللہ حق تو یہ تھا کہ ہمارے جتنے زون ہیں ان سارے زونوں میں ایسی جماعتیں چلتی اور سارے مہینے پر محنت ہو جاتی لیکن مقدس سے ہماری 2 ہی جماعتیں چلی ہیں یہ حضرات کے بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں کہ ماشاء اللہ ان دنوں میں ماشاء اللہ حضرات پیدل چلے ہیں ایسے قسم و پس مسلمانوں کے پاس رہے ہیں اور وہ ماشاء اللہ وقت پورا کر کے یہاں لوٹے ہوئے ہیں جن کی ابھی یہاں کاروباری ہوگی بھائی کاروباری ہم اور حضرات کیا کاروباری ہیں اصل تو کاروباری ہم سب کی اللہ کے وہاں ہونے والی ہے یہ اسی کی تیاری ہے کہ اللہ وہ آسان کر دے کیونکہ یہ ہم سب سے متعلق ذمہ داری ہے ذمہ داری پوری کر کے گئے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلہ دے گا निर्फल चल रहे तो वही होंगे। इसलिए आप हजरात जो जोनों में चलकर आए हैं बहुत ही काबिले मुबारकबाद लोग हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह पैदल चले हो पैदल फिरे हो अल्लाह के नाम पर, आप थके हो तो अल्लाह के वहां आपका बहुत बड़ा अजर हो गया। किताबों में आता है अल्लाह के सलमा दुनिया में जिंदा हो, इस गरज के लिए कोई चले फिरे और उसके जिसम पर अगर दोबार लगता है अल्लाह पाक वहां जहन्नम की आग पर जाते हैं तो भी हम कर देते हैं। आदमी नमाज के लिए चलता है एक एक कदम पर गुनाहों की माफी है। आपके जरिए से पता नहीं कितने पढ़ाए जुड़ना हो गए तो आपके कदम जो चले हैं हमारे उधर फरमा देते हैं कि उसके उन कदमों के नीचे अल्लाह कितनों को दबा देते हैं और नेकियों को बढ़ने का बड़ा जरिया है। तो आप हजार तो बड़ी कमाई करके आए हो, तो आप हजार बहुत ही काबिल मुबारकबाद लोग हैं, हमसे ज्यादा अफजल और बेहतर है। फिर अल्लाह के रास्ते का निकला हुआ और घर में बैठा हुआ वो बराबर नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि कारगरी हमारी नबी सल्लम की मेहनत का एक अमल है, उनकी मस्जिद का एक अमल है, इसलिए कारगरी तो कर रहे हैं। वरना हम कोई आपको पूछने के लिए नहीं बैठे। अल्लाह के नबी सल्लम की मस्जिद में लोगों को काम के लिए भेजा जाता था तो रवानी की बात करके भेजा जाता था, लोगों को काम समझा कर भेजा जाता था, और जब वो हजरत वापस आते थे तो इनसे कारगरी ले जाते थे। काम को इसलिए समझा कर भेजना है ताकि क्या काम करना है उससे डिलीवरी हो जाए, और वापसी पर कारगरी पूछते थे तो उससे यहां हो जाता था कि भाई जैसा करने को कहा था ऐसा हो या नहीं हुआ। खुदा नगर अगर उसमें कोई आगे पीछे हुआ है तो उससे डिलीवरी हो जाए ताकि वो काम भी महफूज हो जाए और काम करने वाले भी महफूज हो जाए। और ऐसे माफिया हुई अल्लाह के नबी सलम के जमाने में क्या कर उन्होंने कारगरी सुनाई तो अल्लाह के नबी सलम ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं होना था, यूं होना था। एक काफले वालों ने अगर सुनाए कि फलां साहब के जहाज में फलां आदमी आ गए थे तो वो कलमा पढ़ने लगा लेकिन उसको फिर भी खत्म कर दिया। तो पूछा क्यों उसने ऐसा किया, अल्लाह के नबी सलम वो तो मौत के डर से उसने ऐसा किया था। तो फौरन फरमाया अशफत तकलबा हूं, क्या तुमने उसके दिल को फाड़ कर देख लिया था। तो इसका मतलब मंशा जाहिर फरमाई कि इनको नहीं कतल करना था, और ये फरमाया कि अल्लाह मैं इस कतल से बरी हूं। तो सबको यह रहबरी हुई कि कोई अगर जाहिर में भी पढ़ ले तो उसको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो कारगरी से रहबरी बन जाती है। तो हम भी इसी जहन से सुनाएंगे, जी सुनने वाले इसी जहन से सुनेंगे कि माशाल्लाह तो मुबारक लोग हैं काम करके आए हैं, तो उससे हम भी महफूज हो जाते हैं आइंदा काम करने के लिए सोचते और हमारा काम भी महफूज हो जाता है। अगर यह रहबरी और रवानगी की बात ना हो तो फिर घर जाने वाला अपने जहन से काम करेगा और जिसने जो काम किया है उसको वो ठीक ठीक समझ कर करेगा और फिर उसी पर जमा रहेगा। तो फिर एक काम में पता नहीं पचासों तरीके जिंदा हो जाएंगे। तो यह रवानगी की बात भी है और कारगरी भी है, तो उससे हम भी महफूज और काम भी महफूज। देखो तो बोले कसम सौ साल हो गए लेकिन ऐसा अल्लाह ने इसको महफूज कर दिया कि छह बड़े आजमों में एक ही हिस्से का मसला हो रहा है। इसके अरबी कश्मीर इसके मुलाकात भी इसका सारी चीज है। क्यों? कि ये दो चीजों की बरकत है, रवानगी की बात थी और कारगुजारी की अमल थी। तो ये इसी जहन से हम बुजुर्ग की मस्जिद का अमल समझ कर सुनेंगे भी सुनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह का फैसले को बोलते हैं।
जमात कितने साथियों की थी, कौन से हल्के की थी, आपको यहां मशवरे से कितने जिहाद दिए थे कयाम के लिए और कितने जिहाद दिए थे मुलाकात में, इसमें जो जिहाद का कयाम था उसमें कितने जिहाद मस्जिद वाले थे और कितने जिहाद ऐसे मेरी इसमें मस्जिद और कितनी नहीं आपकी जमात का
हमारी जमात सात साथी थे और मोहासा में ग्रंथ बिहार था
कितने साथी थे
सात
चार दिन हमारी थे
चार दिन पांच में कयाम हुआ।
ये 42 जगह ऐसी थी जिसमें सात दर से ज्यादा थे,
21 हाँ इधर लिखने में जरा 21 जगह थी जहाँ कयाम बिहार थे जिसमें 10 मकान से ज्यादा थे, लेकिन 13 में कयाम हुआ हमारा। 13 के अंदर कयाम यानी मस्जिद, तो जहाँ मस्जिद थी वहाँ कयाम नहीं होता था, बारी होता था, और चार जगह इबादत गाने में कयाम हुआ। और अकराब के गांव की मुलाकात 42 हुई।
ये जहाँ आपका कयाम किया 13 जगह, वहाँ आप एक कयाम का बच्ची के दिखाते
दो दिन ठहरते थे, और जरूरत होती थी तो तीसरा दिन एक दिन बढ़ाते थे
हम लोग। और वहाँ कयाम कहाँ हुआ?
इबादत का जैसा होता था वहाँ होता था तो वहाँ कयाम करते थे, वरना बाहर जो चौक होता था वहीं कयाम करते थे, जैसे पंचायत का उपला हो गया।
आप लोगों के साथ टेंट है?
हाँ टेंट
टेंट दिया।
टेंट तो यानी अमीर था
तो साथियों के टेंट में के कपड़े ले गए, कितने जोड़ दे रहे थे?
मैं 4 ले गया।
ऐसा मना है कि ड्रोन की कारगुजारी होने के लिए आपको हंसी की आवाज बर्दाश्त नहीं होगा। खाने का अपना बैग का काम था।
हाँ हाँ
जब मेरे भाई हमें हमारी जरूरत है, खाना हमारी जरूरत है, तो हम जा रहे हैं दोनों में, तो वहां आपके पास टैंक तो होना चाहिए। इसलिए कि टैंक होता है तो हमने हिम्मत किसी भी जगह हम काम करते हैं। दूसरी बात यह होती है कि जब टैंक होता है तो हम लोगों को दावत भी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ थोड़े देर के लिए आ जाओ, बैठ जाओ। इससे कोई भी आदमी मकानी आदमी होता है तो वो इस किस्म की चौक पे और इस जो हकीर जहाँ बैठे हुए हों वहाँ आपकी ज्यादा जल्दी बैठता है। और टैंक जो होता है कि तुम उसे इतराब के साथ संख्या रखो हमारा जमा तो हो जाएगी, तो जमा तुम्हें इस तरह नहीं लागे हुए मक्खाओं पर हो अरे कारण काम हो सेट पर ये पोजिशन में अपना बच्चा और पोताना गाँव में पोजिशन हो चालो नहीं मकानों माना चाहिए ये जगह पर आपसे सेट होकर होता है तो मतलब बच्चे को मारा गया है आप इस
बात को लेकर आप जरा इस बात करिए और हमारे साथ हमारे के अंदर 13 साथी जुड़े।
मुझे बताइए कि ये जो आप दो दिन में थे इस दो दिन में क्या
दो दिन में फौरन जाके दुआ करके तालीम कर लेते थे, थोड़ी तालीम के बाद मुलाकात में एक जोड़ी जाती थी बस्ती में, फिर उसकी तरतीब बनती थी गांव की मुलाकात होती और उसके बाद उसके जो अतरफ में गांव होते थे उसकी भी तरतीब बना देते दूसरे दिन की।
100% मुलाकातें जिस बस्ते में जाते थे हो जाती
थी, कुछ बस्ते में हो जाती थी कुछ में रह जाती थी, यानी कि रहने की वजह तो ज्यादातर साथी सुबह या शाम में मिलते थे, तो अब मुलाकात में गए तो थोड़ा टाइम हो जावे तो दूसरा मकान वाला नहीं मिलता था, निकल जाता था, क्योंकि एक दो जोड़ी गई हुए तो अब 25 मकान है, 33 मकान है, तो पूरा काम यानी कि वो दूसरा साथी भी मिलता नहीं था दोपहर को, वो सब काम पर होते थे मजदूरी वाले अक्सर या खेती वाले होते थे। रात को यानी असर के बाद मिल सकते हैं, लेकिन असर बाद भी जाएंगे तो वो ज्यादा मकान वाली होती तो थोड़े मकान रह जाते थे।
कितनी जोड़ियां बनती?
जोड़ियां तो सात साथी के तीन जोड़ी बनती थी,
एक साथी उस जगह पर है
क्या?
एक साथी उस जगह पर रहता, बाकी सब काम में चले गए।
हाँ ऐसा होगा।
अपना गांवों में जो एक घर दे घर थे उन्हें पेटा बुला था मुझे
एक घर वाले डेढ़ घर वाले आगे 8-10 किलोमीटर खाते जगह हमको 20 किलोमीटर भी खाते चले जाते
मैं उसका एक वास्तव में पूछिए मैं क्या आज एक घर में डेढ़ घर में 4 घर पूछिए क्या तुम्हारी जो मत देख क्या मुसलमान उसको मैंने मतलब है समझदार
પોઝિશન તો સારી અત્યારે જો મને એમ કે કલમાના મિત્ર નમાજી મિત્ર એ કે આપણે
એમની દિલ્હી આપણે દિલ્હીની હાલત ગમે તે જેટલી સારી હોય પણ દિલ ની હોય કે એને આજે નહીં તો કાલે ઉભી રહેવાનું ચાહે મુસલમાનોના ઘટમાં રહેતો હોય કે કોઈ બીજે છે દિલ ની હોય જિંદગીમાં કે અમે જે તમને પૂછવા માંગીએ છીએ એમની દિલ્હી પોઝિશન છે એમના કલમાની શું હાલત છે એમના બચ્ચીની શું હાલત છે આજે બે ઘર છે 3 ઘર છે ને આખું ગામ જે છે ઇસ્લામ એ માંગો હું નથી સાહેબ છે કે તબીલા જો તબીલા તો શું પૂછે જે જોઈ એ તો નમાજની હાલતમાં બધી બાજુ કમી છે નમાજમાં તો બિલકુલ નમાજ સુતે ખબને મુક્ત પરિચય બનાવો અમુક જગ્યાએ પર પાબંદી ના જાતી નથી અમુક એક નમાજ બે નમાજ અમુક પરિચય ગામ એટલે માહોલ જોડે માહોલ નહીં મળતો એટલે ખાસ અમારે જાણતો નથી એટલે અમે દર્દી જોઈ આપી દઈએ ખાતે ભાઈ જમાત ભાઈ અલગ અલગ આમાં ગામમાં અલગ અલગ ઘર ઉભી હોય છે પણ અમે તરજી બી આવીએ કે પેલા ઘર હું ના જોઉં પેલા ઘર હું ના જોયું
પોતાની પણ ગામમાં જમા કરવા માટે એના માટે કહેતા હતા એવો અંદર હતી અત્યારે અમારે તો અમે બધા ઘરે નથી રોકાવા એટલે અમારી જગ્યા પર બધા આવતા નહીં તો બોલાય તો આવો તો અમુક પ્રાથમિક બે જમા જેવું કરી શકતા
તમારા એકને ટેન્ટ નથી તમારો જિલ્લા પાસે ટેન્ટ નથી પછી કેમ ના આપ્યો ટાઈમ સાથી ઓછા હતા એમાં મહેનત કરી ગયા પેલી જે મહેનત થવી જોઈએ ના થાય એના માટે નથી
ઉભો કરવા માટે કેટલા માણસો કેટલો ટાઈમ જોશે
હવે અમે એ ભાવ કે
જે ઘરોમાં જે ગામડાના અંદરમાં 5 ઘર 10 ઘર 15 ઘર મુસલમાનો હોય છે ક્યારેક તો લોકો મંગો જે દીની તો છે તમને કોઈ એવા કેટલા માણસો મળે કે જેમને તમે કલમો સહી કરે
સહી કરે કલમો તો આવે તો સંસ્કૃત સહી
લાગુ થઈ જવાનો.
આજે
પેલા જે તો દુનિયાની વાતો કરતા હતા, તમારા કેટલા છોકરા છે, શું છે, કયો કારોબાર છે, એને માણસ કરી થોડી દુનિયાની વાતો કરી પછી ફરી ભાઈ આપણી દુનિયામાં શાના માટે આવ્યા છીએ, દિલ્હીમાં વધી બીજી વસ્તુ દુનિયામાં આવવાનું મકસદ આપણું બતાવતા તમે. નહીં તમે બે સાથે જતા ને, બે બેની જોડી બનાવતા, એમાં અમે સાથે જ કર્મો પડાવતા, પસંદી પડતા, પછી સીધા નહીં એમને બધા પેપર વાપરા પણ લગાવ્યા મકસદ માટે દુનિયામાં મોકલાય જાય આપણા પહેલા અમે સ્ટાર્ટ કરતા. પણ બે તો બુજુર્ગ હતા એક સાથે છે, ઇસ્તેમાઈમાં અમે 8-9 કિલોમીટર દૂર પ્રચાર કર્યા ટાઈમ છે, અને સિંથિરાદમાં 25 કિલોમીટર આસપાસ ચાલેલા સાથે. હા એવી બને ચાલે. આ સાથે 48 કિલોમીટર ચાલે
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. محترم دوستو ہماری جو جماعت تھی کسر پورا کی 10 ساتھی تھے اور بلوڈا ہلکے کے اندر, تو آدھے بہار کوٹالی کے اندر پڑتے اور آدھے ادھر ہلکے کے اندر پڑتے. کل بہار 22 تھے اور اس میں پیتا گاؤں جو تھے وہ 20 گاؤں تھے. پیتا گاؤں और पैदल हमने जो सफर किया, इस्तेमाई जो सफर किया पैदल 161 किलोमीटर पैदल सफर किया. उसमें मस्जिद वाले चार गांव
नहीं,
हाँ मस्जिद में था. इसमें 2 जगह पर मकसद थे, वो भी घरों के अंदर पढ़ा रहे थे और एक जगह पर मदरसा था, उधर मस्जिद नहीं थी, गांव के अंदर खाली मदरसा था. हम हमारा टेंट लेके गए थे, गांव के चौराहे ज्यादातर खुली जगह पर लगाते थे और गांव के चौराहे पर ही लगाते थे. और उसमें कभी कभी कोई चबूतरा मिल गया तो उसमें रुक जाते थे, क्योंकि वो गांव के बीचों बीच होता है.
ये रियायत होती थी कभी कभी, जिधर वो साइड में अगर जगह मिल जाती थी तो उधर रुक जाते थे, लेकिन ज्यादातर हमको जगह वो गेम के इलाके के अंदर ही मिलती थी। हम दो जगह पर ऐसे ठहरे थे, बिरोड़ा में, दो जगह पर ऐसा हुआ हमारा कि बच्चे हमारी साथ में हमारे साथ अमल के अंदर भी जुड़े। कि पूरे दिन हम उधर बैठे थे, सामने मुसलमानों के घर थे, कोई आदमी नहीं आया, लेकिन जब स्कूल खत्म हो गई तो एक बच्चा देख रहा था, बार बार हमारे पास आ रहा था। हमारे साथी ने फिर उसको बुलाया, यार मोहब्बत से उसको चॉकलेट वगैरह दी, थोड़ा मानुस हुआ तो बार बार आने लगा। फिर तब तक तो मुसलमानों के जितने भी घर थे कोई हमारी तरह देखता नहीं था। तो हम अजान करते थे, एक बूढ़ी अम्मा थी, वो अजान के टाइम पर ऐसे कुर्सी पर बैठकर हाथ उधर हाथ दुआ की तरह करती थी और अपने हाथों को बस दुआ मांग रही थी, समझो नमाज का तो कोई तरीका उनको शायद मालूम नहीं होगा मेरे ख्याल से। और वो बच्चा के बाद दूसरे दिन जब हमको निकलने का था तो वो टाइम पर बच्चे की माँ हमारे पास में आई, मतलब हमारे घर पर से चाय की दावत है जो चाय पी के जाए। तो हमारे साथी बोल रहे थे इधर मंगवा लो चाय, मैंने कहा नहीं इधर नहीं मंगवा, घर पर बुला रहे तो घर पर जाके चाय पियेंगे। तो सारी साथी गए घर पर चाय पिए और उधर जाके जो घर वाले थे उनके शोहर वगैरह वो लोग तो हमारे साथ में बात करने के लिए आए नहीं, वो लोग तो अपने घर के अंदर ही गए, अंदर की साइड में थे। लेकिन मस्तूरात बड़ी उम्र की थी तो वो लोगों ने थोड़ी बात की, हमारे गांव के मौलाना के पास पहले पड़े हुए थे वो, तो उनके साथ में थोड़ा बात किया। और मेरे मर्द असल घर के अंदर से निकल नहीं रहे थे, हमने मर्द उनके घरवालों को भी बुला के भाई आपके घरवालों को बुला, बोलते वो नहाने बैठे ये है वो है। तो मसूरत के सामने थोड़ा दिन की बात कर दिया। हमने बोला था लेकिन उन लोगों ने फिर अपने हिसाब से उन्होंने बोला। फिर दूसरी जगह पर गए तो उधर पहले जमाते रुकती रही थी, जमाते रुकती थी लेकिन गांव के चौराहे पर रुकती थी। तो वो गांव के अंदर सारे बिरादरी के लोग थे, इधर चार पांच बिरादरी के एक एक दो दो घर, तो सब लोगों ने मिलकर फिर मशवरा किया आपस में उधर की, जो मकतब कायम किया एक मौलाना पढ़ा रहे, मकतब भी कायम किया हुआ है घर के अंदर पढ़ा रहे। तो मौलाना हमको जाने का था, वो मौलाना हमको मिले थे, हमने कहा भाई हमको फला गांव के अंदर जाने का है। तो उन्होंने फिर हमको बताया कि भाई उधर गांव के चौराहे पर नहीं रुकना, उधर एक घर है उधर रुकना, क्योंकि वो आदमी मानुष नहीं था लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहे थे मौलाना, उसकी वजह से थोड़ा मालूम हो गया। तो फिर घर के अंदर उनके और वो साथी जो बड़ी उम्र के थे, जो वो लोग तो हमारे साथ अमल में नहीं जुड़े थे, लेकिन उनके बच्चों को सारे जितने भी बच्चे थे, चार पांच बच्चे, सबको हमारे साथ अमल के अंदर जुड़ाते थे, जुड़ने के लिए देख रहे थे। दूसरे दिन शाम को उन लोग दूसरे दिन दोपहर में वो लोग आए, हम तालीम कर रहे थे। तो तालीम के वक्त फिर उनको बिठाया, दो साथी आए थे, दोनों को बिठा कर बातचीत किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन लोगों ने कहा हमारी दावत के लिए, हमने कहा कि भाई हमारी नमाज का टाइम ये है, वो है, सब बताया पूरा करती। उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग नमाज वगैरह के लिए आएंगे, लेकिन नमाज में वो लोग जुड़े नहीं। हम लोग शाम को उनके घर पर गए, उधर जाके हमने कम से कम एक घंटे देखा उनके घर पर। दूसरे साथी ने खाना वगैरह फारिग होकर वो लोग तो चले गए, लेकिन हम लोग उधर बैठकर उनको पूरा दीन ईमान यकीन की सब बातें करके, नमाज वगैरह की सब बातें करके उनको बताया। हमने बताया भाई एक जगह पर आप लोग नमाज वगैरह कायम करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये वो आखिर के बारे में थोड़ा समझे। वो मौलाना डेढ़ से दो घंटा तक पढ़ाते हैं, सुबह में जाते हैं, सात बजे जाते हैं, नौ साढ़े नौ बजे आते हैं, फिर निकल जाते हैं। वहां से बिलोडा से जाते हैं, चार साथियों का कलमा वगैरह सही सुना था, सुना था और उनको सही करवाया, सही था अल्हम्दुलिल्लाह। उधर जो हमको रूट दिया हुआ था, वो रूट के हिसाब से पहले जिस बस्ती के अंदर 18-19 घर थे, वहां पर आज दो चार या पांच घर रह गए। ये सारे लोग अपने कोई हिम्मत तलब सेटल हो गया या कोई किरण सेटल हो गया, जिसको भी समझ में आ गया कि भाई सही लाइन क्या है, सही दीन क्या है, इस्लाम क्या चीज है, तो वो लोगों ने अपना अपना ठिकाना अपनी अपनी बस्ती के अंदर कर लिया। बेटा गांव के अंदर भी एक एक दो दो मकान थे, ज्यादा मकान नहीं थे। उधर भी मुसलमानों की हालत वही है कि भाई नमाज वगैरह की कोई बहुत कमजोरी है उन लोगों ने। उसमें ज्यादातर दूसरे शहरात के लोग थे, हमको वो लोगों को नमाज की हम लोग दावत देते थे, तो कोई कोई जगह पर वो लोग नमाज पढ़ते थे घर पर, कोई कोई जगह पर नहीं पढ़ते, बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ते। वो लोग जुम्मा वगैरह पढ़ने के लिए इधर इधर के अंदर जाते थे। टोटल कुल मुलाकातें हुई 129 पूरे साल में, क्योंकि आदमी लोग ज्यादातर है नहीं उधर। पहले बहुत सारे आदमी थे, वो सब लोग अपनी जगह पर सेटल हो गए, हिम्मत नगर सेटल, इधर सेटल हो गए।
सेटल हो गए उसको मुतालिका नहीं किया, अभी जो वहां है उनका क्या,
अभी जो वहां है
आपको ये हम सर्वे करने के लिए हमें नहीं
दे। नहीं वो बात सही है, उधर जो अपने साथी थे और मुसलमान भाई थे, उन लोगों को ईमान यकीन की बात करके उनको हमारे साथ में नमाज पढ़ने की हम लोग दावत देते थे, कि वो लोगों के हालात थोड़े ईमान यकीन के बारे में एक जगह पर ऐसा हाल था कि भाई मुसलमान नाम ही सब नाम मुसलमान का है, सच्ची मुसलमान, उसको मिलने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन वो साथी हमको मिला नहीं। दो मौसम कम से कम गए बेटा गाँव से, एक जगह पर मसूरत में बात किया।
और
ہماری جماعت کے ذریعے سے وہاں کی مسکرات کے کان پر اللہ رسول کی بات پڑ جائے, یہ ساری جماعت کو روانگی کے موقع پر ہدایت دی جاتی ہے. اور ایسے پیٹا ملاقاتوں کے موقع پر یہ ہدایت ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ بھائی مردوں سے اس طرح ہم بات کریں کہ اس کی مسکرات تک بھی ہماری بات پہنچ جائے. اگر ان تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنی بھی فکر کریں گے, بچوں کی کریں گے, اٹھے مردوں کی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں وہاں کہنے سننے کے ذریعے سے ان چیزوں کی فکریں زندہ کرنا ہوتی ہے. اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی وہاں مسکرات میں ہوا نہیں ہوا. ماشاء اللہ وہ جماعتوں نے کارداری سنائی کہ قریباً ہر جگہ پر انہوں نظرات میں مسکرات کے جہاں بڑے جہاز کی کوشش کی کہ وہاں مردوں سے جو ملاقاتیں ہو جائیں اور مسکرات میں بھی پروگرام ہو جائے. اس وجہ سے آپ سے بھی ہم پوچھ رہے تھے کہ ماشاء اللہ آپ کے بیس جہاز وہ تھے جہاں ماشاء اللہ زیادہ آبادی والے تھے تو وہاں یہ ہوا نہیں ہوا. چلے اللہ قبول فرمائے. باقی ایک بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مسکرات اب جس طرح محمد کبھی آ جاتی ہے تو کسی محمد خاتون سے بات ہوگی غلط بات ہے, ورنہ کوشش کریں کہ دین بے دینی کے راستے سے زندہ نہیں ہوتا. مولانا جیسا کہ مقصدات میں کہ دین بے دینی کے راستے سے زندہ نہیں ہوتا, تو مسکرات سے کہیں ہماری ایسی کبھی بھی نہ ہو جائے کہ بال مشافات سامنے بیٹھ جانا ہوا یا ان سے اس طرح سے بات کرنا ہوا, اس سے ہمارا حد کل مقدور بلکہ 100% ہمارا احتیاط ہوگا. ہم کوشش یہی کریں گے پردے سے جو اس میں بعض مرتبہ کھاٹ لگا جانی پڑتی ہے, چادر ان پر ڈال دی, پیچھوں کو بٹھا دیا, جو بھی شکل بنانی پڑے, تو اس کی کوشش. اور دوسرا جو آپ نے سنا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ مولانا نے کہا کہ بھائی فلاں گھر میں قیام کر لیں تو چوراہے پر نہ کریں. ہم تو کوشش دو چیزوں کی حد تک مقدور کریں گے کہ گھروں پر قیام کرنے کی بجائے ہم ایسے ساتھ اپنے ٹینٹ کے ذریعے سے کسی چوراہے پر کسی ایسی جگہ پر قیام کریں جہاں سب لوگ آ سکیں اور سب لوگوں کو ہم اپنی جگہ پر لا سکیں, اور لوگوں کی عبادت گاہوں میں بھی قیام سے ہم پرہیز کریں گے. ہم اپنی کوئی ایسی خالی جگہ پر قیام کریں گے جس سے ہمارا اپنا ایک ہوتا ہے بھائی ماشاء اللہ اس کی طرح کو لے کر آیا, تو عبادت گاہوں پر قیام سے بھی ہمارا پرہیز ہوتا ہے اور ان جگہوں سے بھی ہمارا پرہیز ہوتا ہے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. کتنا پہلے چلے 168 کلو میٹر ماشاء اللہ, بہت 161 اجتماعی جگہ چلے. اور باقی چوراسی کلو میٹر آپ نے کہیں اذان نماز شروع کیا آپ کے پورے سفر میں اسی بستی میں آپ نے اس کو ترغیب دی آپ کو یہ کر لینا چاہیے یہ آپ کے لیے اچھا ہے, اور اس لیے کہ آپ نے دو دن قیام کیا, تین دن وہاں قیام کیا اور آپ نے ابھی دیکھو اس گھر کے نیچے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اب آپ بھی ہمارے شریک ہو جاؤ اور ہمارے جانے کے بعد بھی آپ یہاں نماز پڑھتے رہیں. اس کی کوئی شکل آپ کے ذریعے سے وہاں بڑی کیسی مسجد کیسی گاؤں ایسی شکل نہیں بنی, لیکن اس جگہ پر مقصد کا تھوڑا انتظام قائم کرنے کا سوچ رہے تھے. وہ کیا مولانا سے بات بھی کرو ماشاء اللہ, وہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن ہر گاؤں میں اذان نماز شروع ہو اس کی ترغیب روانگی کی بات میں آپ کو ہوئی تھی, یہ بات ہوئی تھی, تو آپ نے اس کی کوشش کی تھی کہ آپ کی اس کی کوشش ایک جگہ پر کی تھی ہم نے, لیکن وہ ساتھی بول رہے تھے ہم لوگ ادھر اپ ڈاؤن کرتے اس کے لیے ہم لوگ نکل جاتے ہیں اپنی اپنی دکان پر کھول لیتے. اسی کو سمجھانے کی چیز ہے کہ مسلمان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا کیا حیثیت ہے, اور جب اجتماعی طور پر پڑھے اگر شیخ فضل سے سفر نہیں لکھا, اگر کھیت والا اکیلا ہے تو وہ اکیلا نہ پڑھے بلکہ اپنے پڑوسی کھیت والے کو بلا کر پڑھے, اور اس کا نفع کیا ہوگا. یہ فضائل کی کتابوں کو اسی لیے سننا بھی ہے اور اسی کو سنانا ہے, اس کی قیمت ہمیں سنانی ہے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھو گے تو اس کے کیا نفع ہے. ہم لوگ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کے نفع بتائیں. ہم لوگ ایک مرتبہ اس ضلع میں تھے, اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے, اور اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے بات کہی کہ تم کوشش کرو کہ وہاں تمہاری اجتماعی نماز ہو. تو ایک لڑکے نے کھڑا ہو کر کہا کہ ہماری کالج میں لڑکے اور لڑکیوں کا یونیفارم سیم ہے, وہ جو ٹی شرٹ اور وہ, تو ہم سب ایک پہنتے ہیں, ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کون اس میں ایمان والے ہیں کون غیر ایمان والے. تو
हमारे वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हम कैसे पहचाने कौन ईमान वाले हैं कौन गैर ईमान वाले। अब मुश्किल हो गया, तो एक चीज अल्लाह पाक ने उसको साथियों के रहबर में डाली कि आप इश्ते में नमाज पढ़ें। उन्होंने फर्म कहा कि हमारे वहाँ कैंपस में हम कोई धार्मिक प्रवृत्ति कोई कोई नहीं कर सकता किसी भी धर्म वाला, तो नमाज तो लेकिन हर हल में फर्ज है तो क्या करना चाहिए। तो हमारे जो कंपाउंड है उसमें हम नहीं कर सकते, कंपाउंड के बाहर झाड़ है उसके नीचे हम पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है तुम वहां जा सकते हो वहां पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि हम दो चार जो है वो तो हम पढ़ेंगे, तो दो चार ने इस तरह से एक शुरू किया। उसके बाद दूसरे साल जब बन गए तो उस सर ने सुनाया कि हम जब नमाज शुरू की तो तीसरा आया चौथा आया, 15 बच्चे जमा हो गए, सब इस तरह अकेले अकेले घूम रहे थे कोई मुसलमान है के नहीं। तो 15 बच्चों ने हमारे साथ उस वक्त उसने तो सुनाया था, और इतनी बच्चियों का हम जैसे पता चला कितने बच्चे मुसलमान है और जितनी बच्चियां, लेकिन उन्होंने हमारी नमाज देखी तो तीसरा आया चौथा आया पांचवा आया, तो सबकी नमाज भी जिंदा हो गई, एक दूसरे का तारुफ उनको हो गया, अच्छा ये भी है ये भी है ये भी है, और बच्चियां भी आई कि हमारे हर अमल में अल्लाह ने हिकमत रखी होती है। तो हम इसी चीजों को समझाएंगे कि एक दूसरे की वजह से बहुत सारे काम करने आसान हो जाते हैं। देखो रमजान में माहौल होता है सब रोजा रखते हैं तो रोजे रखने आसान, लेकिन रमजान में दो चार रोजे छूट गए हों उनसे पूछो कब कजा किए, तो छह छह महीने हो जाते हैं कजा नहीं हो पाती, तो माहौल नहीं है साथ जाने वाले नहीं है। तो ये जो चीज है उन्हीं चीजों को समझाने की होती है देहातों में। और अजान नमाज का तो एक मुस्तकिल नफा ये भी है, ये तो ये है दर्शन में पहले सत्ता में लिखा कि जिन देहातों में अजान होती है वो देहात शैतान के असरात उस देहातों से खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो नमाज पर जमा होते हैं तो एक दूसरे की फिक्र करते हैं मिलते हैं। और दीन ऐसी चीज है जो उम्मत को जमा करेगी, मौलाना सलमतुल्लाह के बयान है कि दीन ऐसी चीज है जो उम्मत को जमा करेगी, अल्लाह के नबी सलाम ने उम्मत को दीन पर जमा किया है, वरना तो लोग चीजों में बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी दुनियावी मनफात के लिए भी है, उसका भी मनफियत के लिए है, इन चीजों को अच्छे से समझाना है। अब आपने कहा एक जगह कोशिश की थी, आपको हर गांव में उसकी कोशिश करनी थी, हर गांव में मर्दों की फिक्र बच्चों की फिक्र, इसीलिए हमारा चलना फिर होता है। चलो इस मतलब जो भी कमजोरी रही आइंदा इसको तय करना है, ताकि इनके मसूरात में जो चीजें जिंदा कर रही हैं वो उनमें जिंदा हो जाए, उनके बच्चों के लिए चीजें जो चीजें जिंदा कर रही हैं वो उनमें हो जाए, और बड़ों में क्योंकि तो हरेक को वीजा खानी है, हरेक को दवाई करके लेनी है, ऐसे बच्चों के काम बच्चों में जिंदा कर रहे हैं, बड़ों के काम बड़ों में, मसूरात के काम मसूरात में, ताकि सब मिलकर एक मजमा बन जाए, है कि नहीं। अल्लाह ने इसके तौफीक दे कबूल। फोन किया था हमने उन लोगों को दावत दिया था, मुझे अभी वो बाद में फोन करेंगे उनको, आज नहीं वो लोगों के पास से हमने नंबर ले लिया था, आज फोन भी करते हैं इंशाल्लाह, इससे कोई शक्ति बनती है तो शांति महसूस में।
पहले जौनों की जमा की सुबह थी, कितने जौन है
पांच,
तो ये जौन की जो जमात थी उसके सामने काफी जवान की जो बात थी दोनों को एक जगह जमा किया या बाहर जाते पांच जवान अपने तरह से कुल बस्तियां कितनी
चले गए तो उससे
ना मतलब मेरी आवाज पहुंच रही
हाँ
यहाँ ऐसे देहात कितने हैं कि जहां सलमान है और मस्जिद और अजान वगैरह اس میں سے دس سال کی محنت کے نتیجے میں اتنی مستیاں ایسی ہو گئی کہ اس نے اپنے دادا نماز شروع کر دی. ہے وہ سارا مفتی جواب دیں گے تم لوگ تو
ہلکے
والے بتاؤ کہ آپ کے ہلکے میں ایسے بنجر اٹھارہ میں سے چھ جگہ پر مکتب شروع ہو. دیکھو ایک بات میں آپ کے راستے کو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ دین کے معاملے میں سہولت کی طرف چلی جائے. چلو ہو مکاتب کا نظام اپنی جگہ اہم لیکن مکاتب سے زیادہ ان کے ماں باپوں کے ذہنوں میں دین کی عظمت کا آنا ضروری ہے. اگر دین کی عظمت نہیں ہے یا دین کا فکر نہیں ہے تو آپ بچے کو ایک مرتبہ بھائی اے بھائی بھائی آپ آئے تو چکو وہ فوٹو بولے نہ بالکل نہیں اگر آیا تو جواب نہیں تم نے زبردستی بولایا نا تھا. دین کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھتے دوستو ماحول جو ہوتا ہے ماحول آدمی کو دین پر چلاتا ہے. ماحول نہیں ہوتا تو پھر دین دار آدمی بھی بے دین ہو جائے. مکاتب میں مدارس میں بچے پڑھے اچھے خاصے پڑھے لیکن ان بچوں میں جو چھٹیوں میں جب گئے جو اس گھر میں ماحول بھی ہی نہیں ہے تو وہ بچے بھی نماز سے نہ ہوتے. اچھا ہماری طبیعتوں میں کیا ہے کہ بھائی علماء کو فکر مند کر دیا ہم سب پہ فکر کرو یعنی اچھا کوئی پڑھاؤ نہ جواب. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ مجھ سے رہنا ماٹے اگر کوئی بندول جمع کروانا ہوگا تو ان شاء اللہ ہمیں ساتھ آپ کو کرو ہم مطمئن ہو گئے ہم لوگ مقصد چالو دیکھیں مقصد چالو لیکن اس کے ذریعے سے وہاں کیا ہوگا. ٹھیک ہے ٹیوشن والا آتا ہے اس طریقے سے ٹیوشن والا ہمارے مقصد جائیں گے جا کر کے دو گھنٹے پڑھا کر کے چلے آئے. اب یہ بچے پہلے تو ماحول ان کو بتانے کیا بنا دے گا اور پھر بڑے ہونے کے بعد میں کبھی یاد آئے گا کہ یار تم نے نماز سیکھی تھی تو اس وقت میں اس کو نماز سیکھنی نہیں پڑے گی. میرے بھائیوں بنیادی چیز ہم سمجھے اس کو کام ہے بہت آسان ہمارا ہے بہت بڑا مجمع لیکن اس کو طبیعت پر دے دیا. اب جب ہمارے یہ جو آباد گاؤں ہے میرا آپ کا کچھ ہے کیسر پورا ہے یہ ہے سب آباد گاؤں. اچھا اس میں سے بتاؤ کون سا گاؤں ایسا ہے کہ جس میں مقصد ہمارے یہاں 100% نماز دی کوئی چل رہا شبر تو گاؤں آپ اب اس کو نہیں لیا تو یہ حال ہو رہا ہے. آباد ہے ہر گھر میں علماء اکثر یہ گھروں میں علماء ہے لیکن اس کو طبیعت پر نہیں لیا پڑھے پڑھے نہ پڑھ پائے یعنی یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بنجر علاقہ کے مطابق کیا ہے حالات آئے سننا بھی اچھا لگتا ہے پہ ہماری جماعت گئی اور اس نے محنت کی اور اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اچھا لگا تھوڑی دیر کے لیے کبھی آنسو بھی نکل آئے پھر اٹھنے کے بعد میں ختم ہو گیا بہت بڑی جماعت بہت سارے کام کر رہے ہیں یار بنجر میں کوئی کرو نہیں اس سے اوپر میں ایک دو تبصرے کر دوں بات ختم دنیا کے معاملے میں ہمارے لیے نہیں دنیا کے معاملے آج بھی اسپیشل کا ہے پورا جگہ پورا دھندا ہے اس دھندے میں یہ ہے تو آج بھی پہلی چیز یہ فکر کرتا ہے کہ آپ کیوں کی جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے روڈ ہے سارے اسٹیشن ہے ساری چیزیں دنیا میں لائن سے آباد ہوتی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر میں آپ کو بڑی بڑی کمپنیوں کی چیزیں مل جائے گی حالانکہ اس کے پیچھے کوئی تعلقہ نہیں لگا اس کے پیچھے کوئی ضلع نہیں لگا میں آپ سے ایک مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں فوٹو اس کو سمجھو یہ کیوں نہیں ہو رہا دنیا کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے جس دن آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھ جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں صبح کوئی گاؤں میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ چلو اگر آٹھ وانگی یا نو وانگی یا گیارہ کے لیے گھروں میں پڑے رہو اگر جنڈے جو کوئی گاؤں میں اعلان بولو موٹا ندی میں لوگوں جائے ہر ایک بات رہا کیوں اس لیے کہ وہ ذمہ داری لے رہا تھا گھر والوں کو پورو کرو مہاراج دوں گا اب بچوں کی اسکول کے فیس آپ بھی مہاراج دوں گے اب گھر میں گھر والی بیمار تھے تو یعنی دوا آپ بھی مہاراج دوں گے تو وہ گھر میں پڑے ہوئے تو مجھے سدھا ہے بس یہ ذمہ داری ہر آدمی کو اٹھا رہی ہے اس کو ہر ایک ذمہ داری کا ایسا ہے اور یہ بھی ایسا ہے کہ جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا سماج میں اس کی عزت کی ہے سماج میں موٹی موٹی باتوں کریں بھائی کوئی کہے بچوں کے بھائی رہا لیں گے یار پہلا گھر والوں کا خرچ جو کیا جو پوزیشن بدو کیا ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک طرف ہم اللہ کے بندے ہیں دوسری طرف ہم نبی کی امتی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری ہم اپنی بیوی کے شوہر ہیں ہم اپنے بچوں کے باپ ہیں ہم اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں ہم اپنے بھتیجوں کے چچا ہیں ہم اپنے بھانجوں کے ماموں ہیں ہم اپنے خاندان کے لوگوں میں کا فرد ہے یہ ذمہ داریاں ہر آدمی کو دنیا کی لائن کی ذمہ داریوں کو ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے نبھا رہا غریب ہے تو مالدار ہے تو کر رہا سماج کا کوئی مسئلہ آئے گا سماج کو ایک ایک فارم کر دو بھائی آپ وہ ڈینجر مسئلہ سے پورا سماج میں جمع کرانی ضرور آج آئیں گے ہر گاؤں میں سے چودھریوں کو بلاؤ گے تو وہ آئیں گے علماء کو بلاؤ گے تو وہ آئیں گے کس کو بلاؤ گے وہ آئیں گے سماج کا مسئلہ ہے آپ نے سماج پر رہو اپنی ذمہ داری کوئی خاندان قتل میں کوئی مسئلہ اور قتل نہیں کوئی چھوڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو برداشت فکر میں کہیں جائے گی بھائی آپ کریے کیا سمجھ گھر کا مسئلہ آیا تو آدمی بہت اہم کام پر گھر میں بیٹھا ہے اور اچانک سے اس کے سامنے آئے میں گھڑی دیکھی اس نے بھائی بازا ابھی دکان میں داخل ہوا گھر والے نے جدو بھی چاہتوں بھی تھا جو نانا جو گھڑیال تو جو کپڑا تو بدلتا ہے جب گھڑیال جو دکان کھولواؤں ٹیم سے یہاں سے بازا وہاں پہنچا اور فون آیا کہ بھائی وہ تمہاری بائک جیسے ہے میں سوارے بعد میں کہا کہ میں نے سو چپ چاپ پڑی ہے اب یہاں سے بڑھ رہا ہے دکان کے لیکن میری بہن یا چائے نہیں دی اس نے یا کپڑے نہیں بدلے
तो दुकान खोल दी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक हमारी भाई से पाए यानी जल्दी दवाखाना ले गए थे, वो नौकर को कहा दुकान खोल और वहां खोल जिम्मेदारी हर आदमी महसूस लेता है और जब ये लेता है तो दुनिया भी मामला में भी हफ्ताला शाम उसकी मदद करते अल्लाह का ये मामला है। तो कोई आदमी गुना की नीयत करता है तो खुदा उसके पांव नहीं तोड़ रहे, ये तो दुनिया है। तो दुनिया भी लाइन के मसाइल कोई शिकायत नहीं है मेरी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर बोल रहे हैं। दीनी मामला जो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उसको हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और समाज में इसको नहीं कह लिया जाता तो बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े हम जो उलमा है शादी हो गए, गांव में कुछ लड़कियों के मसाइल आए तो वे छोड़ दिए जैसे गलत दे रही, पूरा समाज जमा हो जाए, पूरे गांव वाले जमा हो जाए, लगे रात में मोड़ा गलत से दूध आई आवश्यक सुधर आवश्यक सूचा सब फिक्रमंद हो जाए। हालांकि ये बेपर्दगी आवारगी गुनाह है, गुनाह है कबीरा है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह नहीं, गुनाह है गुनाह कबीरा है ये भी मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं। दो चार जगह चोरियां हो गई, अपने लोग हैं फंस गए कहीं चोरी करने तो बॉम्ब तब तक भाई वालों को करो छोकरों ने कंट्रोल करो आपको बॉम्ब बदम फेर दे उसे समाज बदम फेर दे, चोरी करना गुनाह है, गुनाह है कबीरा है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह नहीं। लेकिन समाज में इसको समझा जाता है, समाज में इसको गुनाह समझा जाता है, किसी बच्ची का करना ये गुनाह समझा जाता है तो उसके लिए हम कभी नहीं। लेकिन नमाज का छोड़ना जो है ये अकबरुल कबाइर है, सारे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है अकबरुल कबाइर, जो मेरे महल्ले में नहीं पढ़ता, मेरा बेटा नहीं पढ़ता। मैंने कहा ना आपसे 100% नमाज कहा, यह अकबरुल कबाइर, नमाज का छोड़ना अकबरुल कबाइर है। यह हजरत मौलाना इलियास साहब नज़रुल्लाह मतलब पढ़वाते तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो है वो नमाज का छोड़ना। लेकिन इसके लिए हमने से कोई भी इसलिए तो मैंने पूछा कि हमारे गांवों में मेरे और आपके हम सब एक ही है, कोई अलग नहीं, उलमा है सब कुछ है, अलग अलग हमारे गुलाम जा रहे गुण मार रहे मेरे बात को कोई कोई है एटलू भी नहीं तो नमाज तो बढ़ते और फिर किसी ने आपको कह दिया अल्लाह बिलो अपना हो जैसे ने पढ़ दी छोड़ू पढ़ लो तो सारी बात को लिया नहीं, जब लिया नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए हम करने तैयार हैं। और जब हम अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करते तो अल्लाह की निगाह में हम गिर जाए, हालांकि मसला आसान है, हम में से कई लोग तो ताजिर है दुकानदार है, दुनिया में सारी चीजें हो रही। अब ये बंजर क्या मतलब है, 10 साल से अपना सर्वे हुआ 12 साल हो, पहला सर्वे अपने ने शुरू किया था जमातों की शक्ल में भेजने का 2010 शुरू में, तो 3-3 जमाते भेजते लेकिन अब तक
वही बन गया
बगल में लेकर फिर रहे।
क्योंकि हमने खाना नहीं, हमने कहा हर आदमी कहता है और हमारा भाई जिला वाला फिक्र कर ही मिला हल्का वाला माशाल्लाह भाई हमारे मस्जिद वाला माशाल्लाह देख दे गांवला से तरह गांवला से क्या दे मिला वो मसला आया सब चला कर चला कर हालांकि सलाहियत हम में इतनी है कि हमने का एक आदमी ये ठान ले और कहे इसलिए कि ये दीन जो है ये दीन के साथ अल्लाह की मदद है। पहली बात ये समझे जब आदमी किसी जिम्मेदारी को लेकर खड़ा हो जाता है और तय करता है और दूरी बनाता है तो पहली चीज ये होती है कि अल्लाह उसको उसके हाथ को पकड़ लेते अल्लाह उसे सुझाते हैं क्या करना है रुको कि खाली जहन बैठा लेकिन एक जिम्मेदारी ले अब अल्लाह सुझाएंगे उसको क्या करना है फिर जिससे बात करेगा उसमें अल्लाह की तारीफ के साथ होगी उसकी फिक्रें करेगा अल्लाह बहुत पैदा करते चले जाए और जिसको रात और दिन हम रखते देखा अब ये जिम्मेदारी नहीं ठीक है मतलब आप जवान हो तो क्या जो मन हुआ अभी उसे अवाम को जरूरत है कोई गरीब ने भी जाने हेल्प करवानी तो कर दे मेरी जिम्मेदारी है मेरा काम है ये है वो चीज जिसको ली जाए जिसको हम निकल एक साल मतलब आ गांव जैसे मने आते बच्चों का फिर कोई भी गांव मने आते 50 किलोमीटर दूर से कोई वहां पर पहले लोगों अप डाउन करे थे तो सूरत थी मुंबई जाए सूरत से अहमदाबाद आवे साधन इतना चाहिए मैंने आपको एक गांव अब क्या मैं वहां जाऊंगा अकेले जाऊंगा मेरी मस्जिद का कोई शादी मेरा साथ देता है तो उसका शुक्र है जैसे मेरे बेटे की शादी है वली मां मुझे करना है अगर गांव का कोई भला आदमी आकर कहता है मारो लायक कोई काम हो तो मेहरबानी नहीं तो मारो तो करवाओ उसके बाद ये जिम्मेदारी मेरे पर है मैं करूंगा वो गांव का कोई आदमी साथ देता है क्योंकि मैं क्यों क्यों मैं बेटे का वली मां क्यों करूं उसका भाव मैं क्यों इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उम्मती हूं ये मेरी जिम्मेदारी है आज मैं ये करूंगा कल दूसरा परसों तीसरा दुआएं सबके लिए मांगूंगा लेकिन मेरे बस में एक बस्ती है एक बस्ती को मैं निशाना बना करके अब उससे ये रास्ते जो भी इख्तियार करने पड़े उनको बुलाना पड़े अपने घर अपने को वहां जाना पड़े जो भी करना है दोस्ती ये वो सारी चीजें करके आहिस्ता आहिस्ता उसको जहर बना लिया और अगर ये नहीं तो रात दिन हम जाते हैं अपने धंधे के लिए फेंक लिए जाते हैं किसी की भी शक्ल में लोग आते हैं हमसे मिलते हैं अगर हमारी शरीर बनी जिसका नतीजा ये है कि हम इतने हैं हमारे पास कितने चार महीने लगे हुए हैं 1000 से ज्यादा है और गांव कितने हैं 100 एक हल्के में अगर मैं 18 का एवरेज भी पकड़ लूं 20 का एवरेज भी पकड़ लूं तो 100 गांव 4 महीने वाले 1000 ओलमा कितने हमारे है 1365 कितना है 1000 में 1300 जिला वाला ने बीजा दीदारों ने हाल नहीं कर तो खाली आ 2300 ऊपर में 100 गांव तकसीम करिए तो एक गांव में कितना मार सो क्या 2300 से आपको आसान मगर क्यों मैंने अपने दिल से कुछ लिया नहीं बता करके वो भी करे नहीं करे तो कैसे करे कोविड आई
બધા ઘરોમાં બંધ કર્યા. 6 મહિના પછી બધોને લાઈનો ચાલુ કરે. અસર છે ખાલી તબદીલ છે, અસર છે ખાલી દિન નથી. સારું તો છે તો લાભ આવી જણાવજો. ત્યાર સુધી મારા મોટાઓ, મારા ભાઈઓ, જયારે દીનને આપણું જિમ્મેદારીમાં નહીં લઈએ તો પછી અલ્લાહથી આપણી મદદ કેમ કરે? હંમેશા હરેક મસલા એક બસ્તી લો, ઓર વો ભી મશવરે છે. જે બી મારા ગામના બાજુમાંથી યુઝ કરો છો ના, મશવરાથી મને કોઈ બી ગામ આપી દો. મારી મસ્જિદને નહીં, મારી જાતને આપો. અને મારા બસમાં જે છે બધું હું મારી મહેનત લગાડી દઉં. અઠવાડિયે જવું પડશે તો અઠવાડિયે જવું, 4 દિવસ જવું પડશે 4 દિવસે, એમને બોલાવવા પડશે તો, ત્યાં એમની શાદીવાદીમાં જવું પડશે તો, ત્યાં મારે જે કંઈ ખર્ચ કરવું પડશે. બાકી આ વસ્તીને હું આજે નિયત કરું છું કે ઇન્શાલ્લાહ 1 વર્ષના અંદરમાં ત્યાં નમાઝ અને અઝાન જિંદા છે. આટલું ઠાની છે એક માણસ. હવે એની મસ્જિદવાળા એનો સાથ આપે છે, મહેરબાન સાહેબ. એના કોઈ ધણી તો એવો જોયે કોઈ જિમ્મેદારી. અમારા મુખ્ય હરે કોઈ બી છોકરો આવી ગયું અને છોકરો અલા ભયા છોકરું ખોવાઈ ગયેલું શું નવું કઈ જુઓ, તરત જ એનો બાપ ઉભો છે, મતલબ મારું છું. એનો ભાઈ છે, મતલબ મારો ભાઈ છે. આ બંદર કોનો? મારા મુખ્ય તમારા મુખ્ય દેખે કહેવા નથી કે ભાઈ આ મારું છે. મારી વાત સમજમાં આવે? આપણી ભૂલ થઈ રહી બોલો ને યાર. હવે હું રસ્તો છું, આ જ રસ્તે આપણે ચાલશું. હવે 10 વર્ષના અંદરમાં કેટલા માણસો કલમા વગર કબરમાં ગયા? કોણ જમે? આપણે એ ગામડોની ફિકર ના કરી, જો મોટા આપણે એ ગામડોની ફિકર ના કરી તો ઇતેદાદના ખતરા આપણા ગામડોમાં ના આવે? બોલો. આ બાદ ગામોમાં અત્યારે ફિકર આપણને હશે થઈ રહી, આપણી છોકરીઓની, આપણા છોકરોની, એની દીનદારીનો વસ્તુ આપણે શોધીએ ક્યાં પહોંચી રહ્યા છે? જાતે અગર આપણે ફિકર કરી હોત તો આપણું ઘર ને પૂછ્યો. એક માણસ એમ નક્કી કરે કે અઝાનના પહેલે મારે મસ્જિદમાં જવું છે, બસ આ ફાઈનલ. તો કોઈ દિવસ નમાઝના પહેલેની સુન્નતો એની જાય? અઝાન બાજુ બધું એવું થાય કે ભાઈ રસ્તામાં અઝાન થઈ, પણ નક્કી કર્યું છે કે મારે અઝાન પહેલા મસ્જિદમાં જવું છે, કે એ તો થઈ શકે છે કે બાજુ વખતમાં અઝાન જલ્દી થઈ, પણ સુન્નતો એની જાય. તો જે માણસ એ ત્યાં કરે કે ચાહે અસર હોય કે ગણ હોય, મારે સુન્નતો પડવી જ છે ને પડવી, એની તકવીરે ઉલા જાય. જયારે દીનના બીજા બંજર લોકોની આપણે ફિકર કરીશું તો ફિર એ વબા આપણા ગામમાં નહીં આવે. આપણે ઈમાનની તરફ એટલે મારે આજે જે છે સીધે સીધું તમે બધા જિમ્મેદાર છો. તમને અલ્લાહે સલાહિયત આપેલી છે, તમને અલ્લાહે જાનમાલ આપેલો છે. હું મસ્જિદોને કોઈ ગામ સોંપવા નથી માંગતો, હું કોઈ ગામને સોંપવા નથી માંગતો. તમારામાંથી કોણ છે જે એ કરતો મશોરાથી મારી રાય આ છે કે આ ગામથી મારો વ્યવહાર છે તો આ મને આપો તો સારું, નહીં તો મશોરાથી જે પણ આપો ઇન્શાલ્લાહ 12 મહિનાના અંદરમાં કે અઝાન નમાઝ જિંદા કરવાની હું મારી પૂરી તાકાત લઉં. તૈયાર કર્યો ને માટે કોણ તૈયાર છે? પોતાની બંધ પડશે હું કોણ તૈયાર છું? ના ઉભા થો, કરો ફેસલા. દુનિયાના બહુ કામો કર્યા, આપણે બહુ જિમ્મેદારીઓ લીધી. અલ્લાહના નબીના મહેબૂબ થઈ જાઓ, અલ્લાહના બંદા થઈ જાઓ. કોઈની આશા સિવાય અલ્લાહનો આપણે નથી રાખી કે મારી મસ્જિદ કે મારો મોહલ્લો કે મારા હલકો બિલકુલ નહીં. મને મોલ સાહેબ મશોરાથી કામ આપો, હું ઇન્શાલ્લાહ મારી તાકાત પૂરી લગાડી દઉં. ભાઈ કોઈ રીતે શીલ ના કરો. એ ભાઈઓ અવાજ પર કોઈને જબરદસ્તી ઉભો ના કરો. પોતાની જાતથી ખાનો છે, કરવું છે. ફેસલા કરો. હલકોના જિમ્મેદારો, જિલ્લાના જિમ્મેદારો, મસ્જિદોના જિમ્મેદારો, હું મારી જિમ્મેદારી પર છું. પછી મારી મસ્જિદ વાળા મને સાથ આપશે, એમનો આભાર. કરો. અને આ વખત આ ગોધરાથી લઈને હર વિષયમાં હું આજ કરતો આવ્યો છું. મારા સાથીઓની મસલને મારો સાથ આપી દેવા અને લોકો ઉઠી દેવા હર જગ્યામાં. શું કરશો? જે બેઠેલા છે પોતે વિચાર કરો, શું કરો? તમે તમારા ઘરની જિમ્મેદારી લીધી તો અલ્લાહ તમારી પૂરી કરાવે. તમારા સમાજને લીધી અલ્લાહ પૂરી કરાવે. ભાઈ આમાંથી વડાવીના જે સાથી ઉઠ્યા હોય એ આંખવામાં આવે. વડાલીના જે સાથી, વડાલી હલકાના જે સાથી આમો હોત એ આ મારી ડાબી બાજુ આવી. તમે તમારું નામ આપો, તમારા ઝેરમાં જો મને ફલાણું ગામ આપો,